بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحزن، سیشن نمبر 18۔ آج کا سیشن ویژنز کے بارے میں ہے، اور میں نے ایک تو دو دن میں ٹریول کر رہی تھی تو مجھے موقع بھی نہیں ملا ریکارڈنگ کا، لیکن میں نے آپ کو اچھا خاصا ہوم ورک دیا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے سوچا ہوگا ضرور اپنی زندگی کی ویژن کے بارے میں۔ آج کے لیکچر کے ساتھ میں آپ کو اپنی پوری جو میری لیونگ مائی ویژن کی ورک شاپ ہے، جو میں 3-4 دفعہ ڈفرینٹ گروپس میں کرا چکی ہوں، وہ پوری ورک شاپ کا لنک میں آپ کو بھیج رہی ہوں۔ یہ سلائڈ شیئر پہ اپلوڈڈ ہے، لنکڈ ان پہ بھی اپلوڈڈ ہے۔ جب آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے اپنے فون میں یا لیپ ٹاپ میں، تو ہو سکتا ہے آپ کو سلائڈس کی سمجھ نہ آئے، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ چونکہ میں بول رہی ہوں، تو اگر آپ میرے بولنے کے ساتھ ساتھ ان سلائڈس کو ایڈوانس کرتے جائیں یا دیکھتے جائیں، تو آپ کو میری بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تو ورک شاپ کا نام ہی لیونگ مائی ویژن ہے، اور یہ پوری ویژنس کے بارے میں ہے۔ ہے تو یہ بہت لمبی ورک شاپ، یہ تو کافی کتنے گھنٹوں کی ورک شاپ ہے، اور بعض اوقات لوگ پھر یہ مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک دن 6 گھنٹے کرائیں اور پھر اگلے دن دوبارہ سے 6 گھنٹے کرائیں، تو یہ 2 دن پہ بھی محیط ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو میں جو اویلیبل ٹائم ہے انشاءاللہ اس میں میں آپ کو یہ پوری کر کے بتاؤں گی۔ وہاں ورک شاپ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ دے ہیو ٹو بی ان ٹچ ود می، یا دے ہیو ٹو فالو کہ کہیں پہ ورک شاپ ہو رہی ہو تو وہ جا کے اٹینڈ کر لیں۔ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں جو اس کی پہلی سلائیڈ ہے، جس میں ایک وہ جادوئی چراغ بنا ہوا ہے علادین کا، تو پوائنٹ اس میں یہ ہے بیسیکلی کہ زندگی میں کسی کو بھی علادین کا چراغ نہیں ملا ہوا ہوتا، کسی کے پاس بھی کوئی ایسا جادو کا کلمہ نہیں ہوتا جس سے وہ اپنی زندگی ایک دم سے بدل لے اور بامقصد کر دے۔ لیکن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سوچنے سمجھنے کی کیپیسٹی عطا کی ہوئی ہے، جس کے مطابق وہ اپنے لیے ایک ویژن بناتا ہے اور پھر اس کے مطابق ایک اچھی اور افیکٹو زندگی گزارتا ہے۔ اچھی ویژن کے لیے سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ انسان کو اپنی شناخت کا پتہ ہو، اس کو اپنی آئیڈینٹیٹی پتہ ہو۔ پہلی سلائڈ پہ آپ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے کہ مدر آف ٹو، یعنی میں ایک ماں ہوں، ڈاٹر آف ٹو، میں ایک بیٹی ہوں، اور وائف آف ون، یعنی میں کسی کی بیوی ہوں، دنیا میں میرے رشتے ہیں۔ تو یہاں سے جب ہم اپنے رولز، جیسے رولز اینڈ گولز کی ایکسرسائز بھی ہم کر چکے ہیں، پرائیورٹی سیٹنگ بھی کر چکے ہیں، ہم لوگ اپنا ٹائم ٹیبل بھی بنا چکے ہیں، تو اب ہم اس سٹیج پہ آئے ہیں کہ ہم اپنی ان سب باتوں کی لائٹ میں ایک لائف ویژن ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ڈفرینٹ فارمیٹ آف سیشنز ہے جو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر ایک آپ کو کارٹونز نظر آئیں گے، جو پوری لیکچر میں میں ان کو ریفر کرتی رہوں گی۔ بیسیکلی یہ میری اپنی ویژن کے بارے میں ہے کہ میں بچپن سے ہی ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مطلب میرا ایک فکسیشن تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، اور میں یقیناً میری زندگی بڑی خوش ہو جائے گی اگر میں ڈاکٹر بن گئی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ویژن ہے کیا، اور کون سی چیزیں ویژن نہیں ہوتی ہیں۔ ہم بہت سی چیزوں کو اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں، لیکن دراصل ان کا ہمارے مقصد حیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں تو ہمیں ایک خاص قسم کا ڈپریشن ہوتا ہے، کیونکہ پھر ہمارے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں ہوتا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم مشن اور ویژن کا فرق سمجھ لیں، کہ مشن جو ہے یہ کرنے کے کام ہے، لیکن ویژن جو ہے یہ وہ تخیل ہے، یہ وہ نظریہ ہے جو ہم اپنی زندگی جس کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ تو پہلا سیشن جو پہلی ایکسرسائز جو امپورٹنٹ ہے ویژن بنانے میں، وہ ہے کہ ہمیں اپنی پرائیورٹیز پتہ ہونی چاہیے، ہمیں فرسٹ تھنگس کو فرسٹ ہی رکھنا ہے۔ بیسیکلی ویژن جو ہے وہ آپ کا ایک گول ہے، جو آپ کی زندگی کی اسپیریشن ہوتا ہے، جس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جس کی لائٹ میں آپ اپنے سارے ڈیسیژنس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو زندگی جو ہے یہ میں بار بار آپ کو پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ زندگی صرف ٹائم پاس کا نام نہیں ہے۔ जिस ज़िंदगी में नज़रिया नहीं होता वो सिर्फ़ वक्त गुजारना होता है, और जब हम वक्त को इस तरह ज़ाया करते हैं तो फिर वक्त हमें ज़ाया करता है। और जिस ज़िंदगी में नज़रिया होता है, जिस ज़िंदगी में विज़न होता है, फिर वो टाइम पास नहीं होता, वो एक एक्चुअल प्रोडक्टिव ज़िंदगी होती है जिससे इंसान को भी फ़ायदा होता है और उसके बाद आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा होता है। तो मिशन जो है बेसिकली वो हमारा के है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, और हम वो क्यों पैदा हुए हैं वाली बात जो है वो हमारी ज़िंदगी का मिशन बन जाता है। विज़न जो है वो ये है कि हम क्या बनना चाहते हैं, ठीक है जी, और हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तो विज़न, मिशन, गोल, ये सारे अल्फाज जो हैं लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन ये इंटरचेंजेबल हैं नहीं। विज़न जो है ये क्लियरली नज़रिए को कहते हैं। अगर हमारे पास विज़न नहीं होगी, जैसे हमें एक दिन में हमें छोटी छोटी बहुत सी बातें दरपेश आती हैं, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी ज़िंदगी का विज़न क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो फिर हम में सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा। और जब हम में सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा तो फिर मसला क्या होगा कि हमें हर छोटी बात बॉदर करेगी, हम हर छोटी बात पे रिएक्ट करेंगे, और हम हर गैर ज़रूरी बातों पर अपना वक्त ज़ाया करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता होगा कि हमने अपना वक्त लगाना कहाँ है, ठीक है जी। तो याद रखें कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। एक नॉर्मल इंसान, एक एजुकेटेड और प्रोडक्टिव इंसान के सामने जब एक ऐसी ज़िंदगी होती है जिसमें कोई विज़न नहीं होती, तो उसकी हालत अंधों से भी बुरी हो जाती है। जैसे मैंने पहले भी आपको हेलन केलर की बात बताई थी कि द ओनली थिंग वर्स देन बीइंग ब्लाइंड इज़ हैविंग अ साइट बट नो विज़न। तो ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि किसी के पास अगर किसी को बसारत हो भी, किसी के पास देखने की कुव्वत, लेकिन उनके पास बसीरत ना हो, तो उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पथेटिक बन सकती है। और उससे ज़्यादा एक ज़रूरी बात यह है कि विज़न हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जो हमें होप देती है, जो हमें उम्मीद दिलाती है। अगर हमारी ज़िंदगी में विज़न नहीं होगी, अगर हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं पता होगा, तो हम छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी डिस्करेज होंगे और हम बहुत जल्दी नाउम्मीद हो जाएंगे, और नाउम्मीदी के नतीजे में हम बहुत से काम फिर करने छोड़ देंगे। अच्छा जी, बेसिकली जब हम एक विज़न बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरी विज़न ज़िंदगी में बचपन से ये थी कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं। अब उस विज़न को मैं हासिल करने के लिए तो मेहनत करती रही, आप ये समझें कि मैंने अपनी जवानी उसमें ख़र्च कर दी कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता होता कि आखिर हमारी वो उस विज़न की वजह क्या है, यानी मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहती हूँ, या मैं इंजीनियर क्यों बनना चाहता हूँ, या मैं वकील क्यों बनना चाहता हूँ, या मैं टीचर क्यों बनना चाहती हूँ, तो जब तक हमें वो रीज़न नहीं पता होगा, वो विज़न हमारे लिए हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर है जब एक मकसद हयात आपने बनाया है, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी तवानाइयाँ और अपनी सारी जो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप वो सारा उस चीज़ में ख़र्च करने का कि आपने नियत की हुई है। तो अगर आपको उसकी रीज़न नहीं पता होगा कि जब, या आपको ये नहीं पता होगा कि जब ये विज़न मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगी, तो फिर वो विज़न हासिल करना मुश्किल भी हो जाता है, और एक दफ़ा जब आप उसको हासिल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद की ज़िंदगी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको समझ नहीं आती कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है जी। तो इन सब बातों की रोशनी में अब हमें बैठकर ये सोचना है कि आखिर हम अपनी ज़िंदगी में कब एक विज़न बनाएं। अगर हमारी जो भी उम्र है, हो सकता है हम 18 साल के हों, हो सकता है हम 20 साल के हों, 25 साल के हों, 30 साल के हों, 40 साल के हों, 50 साल के हों, जितनी भी हमारी जो भी एज है, हमें अपनी ज़िंदगी में अगर पहले से हमारे पास कोई विज़न नहीं है, तो हमें कब विज़न बनानी है। याद रखें कि जैसे ही आपको ये एहसास हो कि आपके पास कोई मकसद हयात नहीं है, या आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी की विज़न को नहीं सोचा, वही लम्हा है जब आपने बैठकर अपनी विजन को सोचना है, और आपने इस एक्सरसाइज में से गुजरना है, और आपने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद हयात डिटरमिन करना है और फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। वरना रियली वही बात जो मैं आपको बहुत दफ़ा पहले कह चुकी हूँ, अगर आपने वक्त को ज़ाया किया तो वक्त आपको ज़ाया कर देगा। तो यही वो टाइम है, अब हम सब मिल के बैठे हुए हैं जितने लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं, और मैं ये कहूँगी कि आप आगे भी लोगों से ये शेयर करें कि अब वो टाइम है कि आप बैठ के अपनी ज़िंदगी का एक मकसद डिटरमिन करें। तो विज़न जो है ये एक तस्वीर है आपके फ्यूचर की, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ द फ्यूचर, और ये एक ऐसी तस्वीर है जिसको देख के आपके अंदर पैशन पैदा होता है। यानी ये तस्वीर तो कल की है, लेकिन ये आपके अंदर आज एक तवानाई पैदा करती है, एक पैशन पैदा करती है, जो आज के दिन में आप ये सोचते हैं कि मैं आज क्या करूं कि कल मुझे ये विज़न मिल जाए। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि तुम में से जिसका आज कल से बेहतर नहीं है तो गोया उसका वक्त और उसकी ज़िंदगी ज़ाया हो रही है, ये उसके लिए एक नेकबख्ती नहीं है। ठीक है जी, तो हमें मुसलसल इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ना है। विज़न का मतलब ये नहीं है कि आपने आज सोचा और कल आपको वो चीज़ मिल जाएगी। विज़न का मतलब ये है कि आपने अपने फ्यूचर की एक ऐसी तस्वीर सोची है जिसको सोच के आप खुश होते हैं, आप एनर्जाइज होते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, और आप को ये पता होता है कि मैंने आज क्या करना है कि मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद इस पॉइंट पर पहुँच जाऊँ जो मैं आज देख रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप इसी तरह हाथ धर के बैठे रहेंगे तो फिर क्या होगा, आप और लोगों को ब्लेम करेंगे, आप और लोगों को कहेंगे कि चूंकि इन्होंने हमारी मदद नहीं की तो मेरा ये काम नहीं हुआ, चूंकि इन्होंने हमारा ये काम नहीं किया तो हमारा इस तरह नुकसान हो गया। हालांकि अपनी ज़िंदगी के लिए सिर्फ आप खुद ज़िम्मेदार हैं। आपकी ज़िंदगी, देखिए हम सब अकेले पैदा हुए हैं, हम सब अपने पेरेंट्स के ज़रिए इस दुनिया में आए हैं, और हमने अकेले इस दुनिया से रुखसत होना है, और रुखसत होने से पहले हमने जो 4 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे एक अच्छी ज़िंदगी के, टू लिव यानी हमने ये ज़िंदगी अच्छी तरह गुजारनी है, टू लव हमने इस दुनिया से, अल्लाह की मखलूक से, अपने आप से, शब रोज़ से मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ डील करना है, टू लर्न हमने सीखना है, हमने रोज़ाना इम्प्रूव होना है, हमने अपनी पोजीशन को और इस दुनिया की पोजीशन को कल के मुकाबले में आज हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आनी चाहिए, और फाइनली टू लीव अ लेगेसी यानी एक काबिल कदर मीरास हमने छोड़नी है। तो बात यह है कि जब हमारे पास एक विज़न होगी तो हमारा सारी एनर्जीज और हमारे सारे मकासद उसकी तरफ ट्यून्ड होंगे, और हमारी ज़िंदगी एक बामकसद ज़िंदगी बन जाएगी जिसमें मुसलसल फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा और हसद और छोटी छोटी बातों को रिएक्ट करना, तू तू मैं करना, चख चख करना, पख पख करना, छोटी छोटी स्टूपिड बातों पे जाके एक दूसरे के साथ मुकाबले करना, फजूल खर्चियां करना, यानी एक मोमिन की ज़िंदगी जो है वो कभी भी बिला मकसद नहीं हो सकती है, वो बेमकसद नहीं हो सकती। एक मोमिन की ज़िंदगी हमेशा बामकसद ज़िंदगी होती है, जो मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि हमारी एक अल्टीमेट विज़न होती है कि मोमिन ने जन्नत में जाना है। तो वो काम, वो हासिल करने के लिए हमने इस दुनिया में क्या करना है, या तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं कि हम किसी के ना अच्छे में शरीक होंगे और ना बुरे में शरीक होंगे और मौत का इंतज़ार करना शुरू कर दें, तो याद रखें कि बेअमली की ज़िंदगी जो है वो मोमिन के लिए उसकी इजाज़त नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक आपको एक बहुत सारे कलर्स का एक ट्रायंगल नज़र आएगा, उसकी तस्वीर भी मैं आपको भेजूंगी, जो कि आपने अपने लिए एक विज़न बनानी है। ये वर्कशॉप मैंने शायद 2011 में कराई थी, तो उसमें 2016 लिखा हुआ है, यानी लोगों को मैं ये कह रही थी कि आपने 5 साल की एक विज़न बनानी है। तो जब आप विज़न सोच लेते हैं, सपोजिंग आप 5 साल बाद की एक विज़न सोचें कि 5 साल बाद मेरे पास ये होगा, या मैं यहाँ पे होंगी, या मेरी फैमिली के ये हालात होंगे, या मेरी उनके साथ या किसी के साथ रिलेशनशिप ऐसी होगी, तो फिर आप उसके मुताबिक मिशन लिखते हैं, आप उसके मुताबिक ये सोचते हैं कि ये विज़न हासिल करने के लिए मुझे कौन कौन से बड़े काम करने हैं, वो बड़े काम फिर आप तोड़ के गोल्स एंड स्ट्रेटजीज में डिवाइड करते हैं, यानी कि उन बड़े कामों को आप छोटे छोटे कामों में डिवाइड करते हैं और फिर उसमें से आपका एक एक्शन प्लान निकलता है और उससे आपको ये पता चलता है कि 5 साल बाद ये मकसद हासिल करने के लिए आपने आज क्या करना है। तो अगर मैं ये कहूँ, जैसे मैं आज बैठ के ये कहूँ कि 5 साल के बाद मेरे पास 2 कनाल का एक घर होगा, ये भी एक विज़न है, एक मटीरियल विज़न है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 5 साल बाद मेरे पास एक घर होगा, तो मैं तो सिर्फ उस घर की कीमत और उसके वो लवाजमात और उसकी ठेकेदार और उसका वो सब कुछ सोच के मैं आज डिस्करेज हो जाऊँगी। लेकिन अगर मैं ये सोचूँ कि इस घर की क्या ज़रूरियात हैं, इसमें ज़मीन है, इसमें दीवारें हैं, इसमें खिड़कियां हैं, इसमें छत है, इसमें लॉन है, इसमें एक स्विमिंग पूल है, यानी मैं उसको विजुअलाइज़ करूं उस घर को, और विजुअलाइज़ मैं सिर्फ जहन में ना करूं, मैं एक्चुअली वो चीज़ें लिखूं, और फिर मैं ये कहूं कि अच्छा जी 5 साल में अगर मैं ये चाहती हूं कि मेरे घर में एक स्विमिंग पूल हो, तो उसकी क्या लागत है, उसके कितने उस पर पैसे लगेंगे, उसमें कौन कौन सी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, उसमें मुझे कितनी ज़मीन चाहिए है, वो सारी बातें मैं बैठ के सोचूं। और फिर मैं ये सोचूं कि अच्छा इतना ये जो है ना, अच्छा जी तो ये घर जो है ये इतने का बनेगा, पता नहीं जितने का भी बनेगा, सपोजिंग ये घर जो है ये 3 करोड़ का बन रहा है, तो फिर मैं जाके अपने बैंक में जाके देखूं मेरे पास इतने पैसे हैं, तो मैंने 3 साल में इतने पैसे सेव करने हैं, मैंने अपनी वो वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बेचनी है, वहाँ पर मैंने वो वाली इन्वेस्टमेंट देखनी है, यानी कि ये मेरा एक्शन प्लान है। एक तो विज़न है मेरी कि मेरा इतना घर है और उसके अंदर एक स्विमिंग पूल है और वो इस तरह मैं उसमें रह रही हूँ, लेकिन उस विज़न को हासिल करने के लिए मैंने करना क्या है। ठीक है जी, तो एक्शन प्लान जो है उसमें और विज़न में एक जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि विज़न में एक डेडलाइन होती है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि 5 साल बाद, तो ये 2018 है, तो मैं कहूँगी कि 2023 में, और एक्शन प्लान जो है उनमें एक हफ्ते की या एक महीने की डेडलाइन होती है कि मैं अपने आप को ये कहूँ कि ये जब तारीख आएगी तो मैंने ये वाले काम किए हुए होंगे। तो याद रखें कि एन आइडिया विदाउट अ डेडलाइन, अगर आपके जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया है, एक ऐसा आइडिया है जिसके ज़रिए आप हज़ारों लोगों की मदद कर सकते हैं, जैसे एडी साहब के जहन में एक आइडिया था, लेकिन अगर आपने अपने लिए कोई डेडलाइन नहीं रखी, आपने अपने लिए कोई तारीख नहीं रखी कि मैंने इस तारीख तक ये चीज़ हासिल करनी है, तो मसला क्या होगा, एनी आइडिया विदाउट अ डेडलाइन इज़ अ ड्रीम, वो चीज़ सिर्फ एक ख्वाब, एक सुहाने ख्वाब की हैसियत उसकी रह जाती है और उसकी कोई हैसियत नहीं रहती, किसी को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता और सबसे बढ़ के आपको ख़ुद उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतनी अच्छी विज़न है, इतना अच्छा आइडिया है, लेकिन आपने उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं रखी, आपने उसके लिए कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया, तो क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। वो एक सुहाने ख्वाब के बजाय एक ख्वाहिश नातमाम बन जाएगा, वो एक इनकम्प्लीट ड्रीम, एक इनकम्प्लीट विज़न बन जाएगा जो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, आपको उदास करेगा और आपकी एफिशिएंसी को कम करेगा। तो जो भी आपके जहन में अच्छा आइडिया है, खुदारा बैठ के उसे लिखें, फिर उसके गोल्स बनाएं, फिर उसके एक्शन प्लान्स बनाएं और उसके डेडलाइंस लिखें, उनकी तारीखें लिखें कि इस तारीख से इस तारीख तक मैंने ये काम कर लेना है। हो सकता है कि जब आप उसका एक्शन प्लान लिख रहे हों तो आपको ये अंदाज़ा हो कि ये मेरी विज़न ठीक नहीं है या ये मेरी विज़न प्रैक्टिकल नहीं है, फिर आप उसे अबैंडन कर दें, उसे अपने जहन से निकाल दें। जब उस चीज़ को आप अपने जहन से निकाल देंगी तो आपके जहन में जगह पैदा होगी और मज़ीद वसत पैदा होगी और आप उससे बेहतर विज़न बनाएंगी। ठीक है जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अच्छा जी, उसके बाद याद रखें कि विज़न जो है वो हमेशा आपकी अपनी पसंद के मुताबिक होनी चाहिए। जब तक विज़न जो है ये आपकी पसंद और आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक नहीं होगी, वो आपको एक्साइट नहीं करेगी, वो आपको पैशनेट नहीं बनाएगी और आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो अल्टीमेट विज़न तो मैंने आपको बता दिया कि हम जैसे ये कहते हैं कि अल्टीमेट विज़न मेरी ये है कि मैं जन्नत में चला जाऊं, फिर उसका एक पर्पस होता है जो मैंने आपको बताया कि पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ या मैं ऐसी क्यों चाहती हूँ। फिर जब आप उस एक विज़न को तोड़ के उसमें से छोटी छोटी विजन्स बना लेते हैं तो फिर आप एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के मुताबिक आप अपने शबो रोज़ गुजारते हैं। तो याद रखें कि जब तक आप अपनी विज़न को छोटे छोटे उसमें डिवाइड नहीं करेंगे, आपको वो विज़न बहुत बड़ी नज़र आएगी और आपको वो हासिल करना मुश्किल नज़र आता रहेगा। लेकिन जब आप उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लेंगे तो आपको वो एकदम से प्रैक्टिकल नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। फिर एक बहुत खूबसूरत कोट है, इसकी भी मैं आपको तस्वीर भेजूंगी, एक्शन विदाउट विजन इज़ ओनली पासिंग टाइम। कि आप बस वैसे ही बस काम करते रहें और आपकी कोई विजन ना हो। उसके बाद विजन विदाउट एक्शन इज़ मेयरली डे ड्रीमिंग। कि आपके पास विजन तो है लेकिन आप उसकी तरफ कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो डे ड्रीमिंग है, वो आपको फ्रस्ट्रेट करती है, वो आपको गुस्सा दिलाती है। बट विजन विद एक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड। जब आपके पास विजन भी है और आपने अपना एक्शन प्लान भी बनाया हुआ है, रोल्स एंड गोल्स भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, अपनी डेडलाइंस भी आइडेंटिफाई की हुई हैं, तो दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। और ये नेल्सन मंडेला का कोट है, उन्होंने ये बात की है। और अच्छा जी, इसके बाद ये है कि आपको यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक स्लाइड नज़र आएगी जो इस वक्त आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक स्लाइड है इसमें जो सेशन 3 है वर्कशॉप का, वो है प्रोएक्टिविटी और रीएक्टिविटी। तो ये आपको अगर याद हो, मैंने पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि रीएक्टिव लोग और प्रोएक्टिव लोगों में क्या फ़र्क होता है। रीएक्टिव लोग जो हैं वो हमेशा अपना एनर्जी नेगेटिव चीज़ों पे ज़ाया करते हैं और वो रिएक्ट करते रहते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो हर सिचुएशन में फ़ायदे का अंसर देखते हैं और उसमें से ऐसी बातें निकालते हैं जो उनके लिए पॉजिटिव होती हैं। ठीक है जी। हाँ, तो ये याद रखें कि आपने जितना भी जो भी आप अपने लिए विज़न लिखेंगे या जो भी एक्शन प्लान लिखेंगे उसमें आपने चार चीज़ों को सामने रखना है। और ये चार चीज़ें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, टू लिव, यानी कि आपने बॉडी अपनी बॉडी का टेक केयर करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, वर्जिश का ख्याल रखना है, टू लव यानी कि जो एक इमोशनल रिक्वायरमेंट है इंसान की उसे बैलेंस रखना है, टू लर्न जो माइंड का आपका फोकस है, माइंड को एक्स्ट्रा आइडियाज़ के साथ नहीं क्राउड करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, रिएक्शन में नहीं जाना है, और फाइनली है टू लीव अ लेगेसी यानी कि एक काबिल कदर मीरास छोड़ना। जितनी चीज़ें आप लिख रहे हैं याद रखें उसमें रोल कन्फ्यूजन ना पैदा होने दें, ना उसमें रोल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने दें कि कोई एक चीज़ जो है वो पूरी चीज़ को डोमिनेट कर ले और बाकी चीज़ें उसमें निगलेक्ट होनी शुरू हो जाएं। तो हमेशा आपने बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है। अगर घर का काम करना है, इन चार चीज़ों का बैलेंस रखना है। अगर बच्चों की तरबियत करनी है, इन्हीं चार चीज़ों का बैलेंस रखना है। अगर आपके मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं तो भी इन्हीं चार क्वाड्रेंट्स का आपने ख्याल रखना है। फैमिली के रिलेशनशिप्स हैं, आपकी वर्क प्लेस के अंदर रिलेशनशिप्स हैं या वर्क प्लेस में आपके गोल्स हैं, ये चार क्वाड्रेंट्स आपने हमेशा अपने सामने रखने हैं और इनमें से किसी को निगलेक्ट नहीं करना, वरना वो वाला रोल जो है आपका वो ज़ाया हो जाएगा और वो गोल आप नहीं अचीव कर सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने वो फील गुड वाला जो आपको बताया था कि ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ख्याल में जो एक होता है आराम और एक है सुकून। तो आराम, हम लोग आराम ढूंढते 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 अक्सर अपना सुकून ख़राब कर देते हैं। जैसे आराम तो बहुत से लोग मे बी नशा करके भी लोगों को शायद आराम आ जाता है, लेकिन सुकून नहीं मिलता उनको और उनकी पूरी ज़िंदगी अपसेट हो जाती है। तो जब भी आप अपनी विजन डिसाइड करें और अपना मिशन डिसाइड करें तो याद रखें कि आप उसे अपने सुकून के लिए लिख रहे हैं और अपने सुकून, अपने आप को सुकून मिलाने के लिए वो काम कर रहे हैं। मटेरियल आराम जो है वो गो के उस एक हद तक ज़रूरी है, लेकिन पूरी ज़िंदगी उस पे नहीं एम होनी चाहिए। मसलन ये कि मैं ऐसा कोई काम करूं कि मैं सारा दिन सोती रहूं और मुझे कोई काम ना करना पड़े, या मैं सारा दिन बैठी रहूं और मुझे कोई काम ना करना पड़े, ये ज़िंदगियां जो हैं ये फिर वक्त ज़ाया करने वाली बातें हैं और ये अपने आप को ज़ाया करने वाली बातें हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने आपको जो क्वाड्रेंट्स बताए थे उन्हीं की डिस्कशन है। आपको आगे स्लाइड्स नज़र आएंगी जिसमें ये लिखा हुआ है, माइंड है, बॉडी है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड जिसकी मैं आपको तस्वीर भेजूंगी वो है अनक्लटरिंग। आप अपने माइंड को कैसे अनक्लटर कर सकते हैं, तो वो जब आप एक दफ़ा अपनी मिशन स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो फिर आपको अनक्लटर करना बहुत आसान हो जाता है। आपके माइंड में जो फजूल बातें भरी हुई हैं ना, एक दफ़ा जब आपको अपना मकसद समझ आ जाता है तो वो फजूल बातें जो हैं वो उनको इग्नोर करना और उनको दिमाग में से निकालना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि फिर एक दफ़ा जब मकसदियत आ जाती है तो आप हर काम में जिसमें आपका मकसद पूरा होता है आप वो काम करते हैं और आप वो काम ऐसा ऐसा छोड़ देते हैं, जैसे फजूल बहसें, मुबाहसे, फजूल फ़ोन कॉल्स, फजूल टीवी देखना, फजूल वक्त ज़ाया करना, फजूल लोगों के यहाँ आना जाना, फजूल बाज़ार में विंडो शॉपिंग करना, बग़ैर किसी मकसद के वहाँ फिरते रहना, फजूल कुड़ना, ये सारी बातें जो हैं ये आपके पास असल में इनका वक्त रह ही नहीं जाता। आपका वक्त इतना कीमती हो जाता है कि आप फिर अपने जहन के कैदी नहीं रहते, बल्कि आप अपने जहन को साफ़ करके और उसमें सारी पॉजिटिव बातें भरते हैं जो आपको फिर फाइनली एनर्जी देती हैं और एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने का हौसला देती हैं। तो अनक्लटरिंग योर माइंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, एंड में जो आप देखेंगे स्लाइड्स में, आपको जो मैंने आपको सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पढ़ाया था, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी की वो बातें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं और आप उन्हें अच्छी तरह से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जबकि सर्कल ऑफ कंसर्न वो चीज़ें हैं जिसके बारे में आप कंसर्न तो हैं लेकिन आप डायरेक्टली उन्हें नहीं अफेक्ट कर सकते। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो तीन किस्म के रिस्पॉन्सेज हैं आपको वो नज़र आएंगे कि इनएक्टिव हैं, रीएक्टिव हैं, एक्टिव हैं और प्रोएक्टिव हैं। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। रीएक्टिव लोग वो हैं जो पास्ट ओरिएंटेड हैं, यानी कि जब उनको कोई भी बात उनसे की जाए या उन्हें कोई स्टिमुलस दिया जाए या उन्हें कोई सिचुएशन पेश आए तो वो प्रेजेंट में नहीं सोच रहे होते, वो पास्ट के मुताबिक जो है एकदम से रिएक्ट करते हैं बग़ैर सोचे समझे, और बसा औकात उनका रिएक्शन जो है वो उनको उन्हीं को नुकसान पहुंचाता है। इनएक्टिव वो लोग हैं जो एक चीज़ को रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इनएक्टिव रहना जो है वो कोई अच्छा रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इनएक्टिविटी जो है उसमें से इनएक्टिविटी ही निकलती है और इंसान की ज़िंदगी एक जगह पर रुक के रह जाती है। ठीक है जी। प्रोएक्टिव वो लोग हैं जो अपना फ्यूचर खुद बनाते हैं, जो हर सिचुएशन में खा वो कितनी भी नेगेटिव हो उसके अंदर जाके उस सिचुएशन को सोचते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और अगर किसी ने उनको कोई नेगेटिव बात भी कही हो तो उनसे आराम से पूछते हैं कि हुजूर हम दोनों मिलके इसे कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, और ये वो लोग हैं जो अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करते हैं। ये आपने सारी ये बहुत गौर से ये स्लाइड्स आपने देखनी है, जो स्टिमुलस और रिस्पांस वाली स्लाइड्स हैं ये आपने बहुत गौर से देखनी है, क्योंकि ये सारी बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है विजन्स में। स्पेशली जब आप एक विजन अपने लिए बनाएं तो आपने उसको विजुअलाइज करना है, आपने उसको देखना है कि मैं ये चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक यतीम खाना बनाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक स्कूल बनाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक हस्पताल बनाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक बिज़नेस करूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी फलां के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करूँ। देखिए ये सारी विजन्स हैं, मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, लेकिन जब तक आप इसमें बिलीव नहीं करेंगी, जब तक आप अपने मेंटल ब्लॉक्स नहीं ख़त्म करेंगी, जब तक आप अपने आप को ये नहीं कहेंगी कि ऐसा हो सकता है और मैं ऐसा करके दिखाऊंगी, तब तक ये काम करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि विजन्स जो हैं ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही आई थी तो उन्होंने उसी वक्त समझ लिया था कि ये वही जो है ये मैंने सिर्फ जज़ीरा अरब में नहीं, ये मैंने पूरी दुनिया में फैलानी है। अगर वो उसी वक्त ये सोच लेते कि ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आप सोचेंगे आज हम सबका क्या हाल होता। लेकिन ये उनकी विजन थी, ये उनका हौसला था, ये उनका अल्लाह पर तवक्कुल था, ये उनका बिलीव था कि अगर अल्लाह ने मुझे एक काम दिया है, अगर अल्लाह ने मुझे एक आइडिया दिया है, तो अल्लाह ने मुझे उसे पूरा करने की एनर्जी भी दी है और अल्लाह ने उसे मुझे पूरा करने की तौफीक भी देनी है। ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है एक मोमिन का। अच्छा जी, नेक्स्ट सेशन टाइम मैनेजमेंट का है, और टाइम मैनेजमेंट तो खैर मैंने आपको बाद में पढ़ाना है, लेकिन इन स्लाइडों में आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। टाइम मैनेजमेंट और विश क्राफ्ट वाले सेक्शंस जो इस प्रेजेंटेशन में भी हैं, ये अभी आपके रहते हैं, ये मैंने आपको कराने हैं। लेकिन इससे पहले वाले जितने हैं वो आपके इसी विजन्स का हिस्सा हैं, वो हमने कवर कर लिए हैं। कोशिश करें कि अपनी एक अच्छी विजन लिखें, और अगर कोई सवाल हो तो वो ज़रूर मुझे भेजें, इंशाल्लाह मैं उनका जवाब दूंगी। कल से हम लोग फिर जब विजन हो चुकी हो, और अगर प्लीज़ आप आज कुछ ना कुछ अब कुछ भी लिख लें, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर लें, अगर एक्चुअल विजन नहीं लिखनी है, लेकिन आपने इसको लिखना है, आपने इसको फॉलो करना है, और आपने इसको गोल्स में ब्रेक करके, और आपने फिर आगे टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, वरना फिर ये मेरा जो ला तहज़न वाला कोर्स है इसका मकसद नहीं पूरा होगा। तो आपने कल से टाइम मैनेजमेंट शुरू करनी है, ठीक है। आज मिलके सारे अपनी विजन लिखें, कल मिलने के वादे के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।